नमस्कार प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उम्मीद है कि आप भी आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दानियल नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है राज्यों का उत्थान एवं पतन। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन को शुरू करने से पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है।
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है।
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूला है,
कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है,
कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, मुझ में
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूल है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूल है,
कभी नहीं भूल है, कभी नहीं भूल है,
कभी नहीं भूल है, कभी नहीं भूल है।
जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है,
जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है,
दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है,
दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है,
सारी बीमारियां यीशु के अधीन, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए अपने प्रियों के साथ कुशल पूर्वक हैं। और आज फिर से परमेश्वर के वचन की संगति के लिए और उसके वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और मैं उन नए मित्रों का भी स्वागत करना चाहता हूँ जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से दानियल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि दानियल ने दर्शन देखा चौथे पशु की, और उसमें हमने यह भी देखा कि प्रभु का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित होगा। और तब आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इस पर भी हम ध्यान देंगे जैसे कि हमने पिछले अध्ययन में देखा था। दानियल ने एक और दर्शन देखा जिसमें मनुष्य के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु को परमेश्वर के समक्ष लाया गया और उसको प्रभुता और महिमा दी गई। सब देश और सब जातियां और सब भाषाएं उसके अधीन हो जाएं। और उसकी प्रभुता सदा तक अटल और अविनाशी होगी, जिसे हमने देखा। मीका की भविष्यवाणी भी यही कहती है कि सब जातियां प्रभु के पर्वत पर उसे दंडवत करने और उसके मार्ग सीखने को आया करेंगी। तो मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमें से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के जीवन के लिए। इस संसार में आपने हमें जीवित रखा है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमें फिर से दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम दानिय्येल नबी की पुस्तक से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय रेडियो के सम्मुख बैठकर आपके वचन में से सुनना और सीखना चाहते हैं, उनके आत्मिक आँखों को, उनके कानों को, हृदय और विचारों को आप खोल दीजिए ताकि आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। उन्हें हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से आप बचाएं। और हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार हैं, निराश और चिंतित हैं। वे इस बात को जानने पाएं कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, अभी इस घड़ी आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं। पिताजी, आप उन्हें अपनी शांति और चंगाई प्रदान करें। आज के वचन पर अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आप मेरे साथ दानिय्येल नबी की पुस्तक 7 अध्याय को निकाल लीजिए और आज हम अपने अध्ययन को 15 से शुरू करेंगे। 7 अध्याय उसके 15 पद से इसमें हम देखते हैं कि पशुओं का अर्थ बताया गया है। आइए आप मेरे साथ पढ़िए दानिय्येल 7 उसके 15 और 16 पद को। मुझ दानिय्येल का मन विकल हो गया और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। तब जो लोग पास खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। उसने यह कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बताया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रतिमा अर्थात मूर्ति का स्वप्न देखकर राजा नबूकदनेस्सर परेशान हो गया था और यह दर्शन देखकर दानिय्येल भी परेशान हो उठा था। अतः वह इस दर्शन का अर्थ समझने के लिए एक स्वर्गिक प्राणी के पास जाता है। आगे हम पढ़ते हैं दानिय्येल 7 उसके 17 पद में। उन चार बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ चार राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे। ध्यान दीजिए, ये चार पशु सिर्फ राज्य ही नहीं परंतु राजा भी थे। नबूकदनेस्सर और उसका बेबीलोन प्रतिमा के सोने के सिर द्वारा दर्शाया गया था और दानिय्येल के दर्शन में पंखों वाले शेर द्वारा। सिकंदर महान और यूनानी राज्य प्रतिमा अर्थात मूर्ति के पीतल के वक्ष और दानिय्येल के दर्शन में चीते द्वारा दर्शाया गया है। ये जंगली जानवर अपने लालची और खूंखार स्वभाव में राजा और राज्य दोनों को दर्शाते हैं। तब हम आगे पढ़ते हैं दानिय्येल 7 उसके 18 पद में। परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। मेरे मित्रों, इस पद में पवित्र लोग मुख्य विषय है। इस अध्याय में 5 पद 21 से 22, 25 और 27 है पवित्र लोगों का उल्लेख करते हैं। दानिय्येल के पुस्तक 8 अध्याय उसके 24 पद में उनका संदर्भ फिर से आता है। भविष्यवाणी का एक विचारक जो एक समूह के रूप में है इन पवित्र जनों को नए नियम के विश्वासी कहता है। कुछ लोगों की मानसिकता और भी संकीर्ण है। वे सोचते हैं कि उनका आराधक समूह ही पवित्र लोगों का समूह है, परंतु मेरे मित्रों, परमेश्वर का परिवार बहुत बड़ा है। परमेश्वर के परिवार में पुराने नियम के पवित्र जन भी पाए जाते हैं। इस्राएल जाति को पवित्र लोग कहा गया है। यहूदी धर्म अपनाने वाली अन्य जाति को भी पवित्र लोग कहा गया है। यह सब नए नियम से अलग लोग हैं, अर्थात कलीसिया में ये नहीं आते हैं। अतः यह न समझें कि केवल आपकी कलीसिया या अनुग्रह के युग के विश्वासी ही पवित्र लोग हैं। परमेश्वर ने तो पेंतिकोस्त के दिन से पूर्व ही मनुष्यों का उद्धार किया था और कलीसिया के उठाए जाने के बाद भी परमेश्वर अपने उद्धार के काम में लगा हुआ है। कलीसिया सुसमाचार सुनाने से चूक जाएगी, परंतु परमेश्वर नहीं चूकता है। मेरे मित्रों, दानियल ही की पुस्तक अध्याय 8 पद 24 में लिखा है, उसकी सामर्थ बड़ी होगी परंतु उस पहले राजा की सी नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय के 6 पद में इसराइल को एक पवित्र जाति और पवित्र लोग कहा गया है, तुम मेरी दृष्टि में पवित्र जाति ठहरोगे। मेरे मित्रों, नए नियम में पवित्र शब्द 200 बार आया है, 92 बार पवित्र आत्मा के लिए और कलीसिया के विश्वासियों को भी पवित्र लोग कहा गया है, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु में विश्वास किया है। रोमियो के पत्र 1 अध्याय उसके 7 पद में इसी प्रकार पवित्र शब्द पुराने नियम के भक्तों के लिए काम में लिया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसके 52 और 53 पद में और महाक्लेश के युग के भक्त जनों के लिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय उसके 7 पद में पाया जाता है। अतः दानियल के पुस्तक में पवित्र जन का अर्थ संपूर्ण इसराइल नहीं है, विश्वासी का समूह मात्र है। अतः यह तो स्पष्ट है कि ये पवित्र लोग कलीसिया नहीं है। दानियल का अभिप्राय किसी भी रूप में कलीसिया से नहीं है। तो आइए हम आगे देखते हैं चौथे पशु का भेद। यहां मुख्य ध्यान केंद्र चौथा पशु है जिस पर दानियल अधिक ध्यान देता है और परमेश्वर भी बल देता है। हमें भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि हमारा इतिहास इस चौथे पशु के युग में ही कहीं पर है। आइए हम पढ़ें दानियल 7 अध्याय उसके 19 और 20 पद को। लिखा है, तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं जो अन्य तीनों से भिन्न और अति भयंकर था और जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे। वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता और बचे हुए को पैरों से रौंद डालता था। फिर उसके सिर में के 10 सिंगों का भेद और जिस नए सिंग के निकलने से 3 सिंग गिर गए, अर्थात जिस सिंग की आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह और सब अन्य सिंहों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। मेरे मित्रों, यहां सब कुछ सामर्थ और हिंसा से संबंधित है। उस पशु के लोहे के दांत और पीतल के नाखूनों का फिर से उल्लेख यहां पर किया गया है क्योंकि वे उसकी खूंखार प्रवृत्ति को प्रकट करते हैं। रोम के अधीनस्थ राष्ट्र उससे घृणा करते थे। हनीबाल ने रोम की निर्दयता का बदला लेने की शपथ ली थी और वह इसी उद्देश्य के निमित्त जीता रहा, परंतु अंत में रोम ने उसका दमन किया। रोम ने अपनी कठपुतली के द्वारा उद्धारकर्ता परमेश्वर पुत्र का इनकार किया। उसने प्रभु यीशु से एक घृणा भरा और व्यंगपूर्ण प्रश्न किया था, सत्य क्या है? रोम ने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और कलीसिया को सताया था। उस पशु के 10 सिंग उगे जो आगामी विकास को दर्शाते हैं। ये सिंग मृतक पशु के नहीं थे, यह एक अलग राज्य की स्थापना नहीं है। रोम आज भी टुकड़ों में बटा हुआ है। यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और कुछ भाग एशिया में आज भी विद्यमान है, परंतु हम इन राष्ट्रों के नाम निश्चयात्मक रूप से नहीं ले सकते। अंत समय में 3 सिंह छोटे सिंह के समक्ष गिर जाएंगे। यह छोटा सिंह व्यक्तित्व, योग्यता और भ्रम फैलाने में और सार्वजनिक अनुरोध करने में प्रतापी होगा। यह छोटा सिंह ख्रिस्त विरोधी है, पाप का पुरुष। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2:3-4 में और पहला पशु जिसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13:3-6 में पाते हैं। दानियल की पुस्तक 7:21 में आगे हम पढ़ते हैं, फिर मैंने देखा था कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया। यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि ख्रिस्त विरोधी के मार्गदर्शन में रोम का फिर से उदय होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13:7 में लिखा है, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उससे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। मेरे मित्रों, यह महाक्लेश महासताव के अंत में छोटा सा समय होगा जिसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11:3, 12:6, 13:5 में पढ़ते हैं, परंतु महाक्लेश से पूर्व कलीसिया उठा ली जाएगी। हम देखते हैं कि रोमी लड़ाकू लोग थे। आज मनुष्य शांति के नारे लगाता है, परंतु हम शांति प्रिय लोग नहीं हैं। पहला थिस्सलुनीकियों के पत्री 5:3 में लिखा है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। मेरे प्रियो, लड़ना हमारा स्वभाव है। इतिहास में मानव जाति ने 15,000 युद्ध किए हैं और 8,000 शांति के समझौते किए हैं, परंतु इस संपूर्ण समय में उसने केवल 200-300 वर्ष शांति के बिताए हैं। मनुष्य का स्वभाव ही लड़ना है, क्योंकि मनुष्य पापी है। रोमी साम्राज्य को फिर से संगठित किया जाएगा और यह काम ख्रिस्त विरोधी करेगा। वह विश्व शक्ति बनेगा। लिखा है कि वह स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा करेगा, जिसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13:6 में पढ़ते हैं। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। आज यूरोप का परिदृश्य क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही एक प्रोफेसर ने यूरोप का भ्रमण किया और पाया कि वहां के निवासियों में हिटलर या नेपोलियन जैसे एक और अगुए की मनोकामना है, जो उनके पहले जैसे वैभव, महिमा और समृद्धि को पुनर्स्थापित कर पाए। बिशप फुल्टन ने जोशीन का कहना था कि ख्रिस्त विरोधी एक महान मानवता का पुतला बनकर आएगा और शांति, समृद्धि और बहुतायत की चर्चा करेगा, परमेश्वर की ओर होने के लिए नहीं, स्वयं में अंत होने के लिए। वह मनोवैज्ञानिक उपायों द्वारा मनुष्य को दोषी विवेक से मुक्ति दिलाएगा, और जब मनुष्य को सुधारवादी और उदार ना कहा गया तो उन्हें लज्जित करेगा। वह भ्रम उत्पन्न करेगा कि जब तक समाज का विकास ना हो, मनुष्य का विकास संभव नहीं है। मेरे मित्रों, संसार यूरोप की एकता की ओर अग्रसर है। उनके बाजार की एकता से तो प्रकट है कि यूरोप इसी दिशा में बढ़ रहा है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम अंत समय में हैं। यूरोप की एक और घटना उनके संगठन का मनोवैज्ञानिक आधार प्रकट करती है। इटली, फ्रांस और जर्मनी का युवा वर्ग इतालवी, फ्रांसीसी और जर्मन कहलाना पसंद नहीं करता है। वे यूरोपवासी कहलाना अधिक अच्छा समझते हैं। ख्रिस्त विरोधी के आगमन की कैसी तैयारी है? आज यूरोप पेड़ पर लगे पके हुए फल के समान है। ख्रिस्त विरोधी को तो बस आकर वह फल तोड़ लेना है, परंतु वह कलीसिया के उठाए जाने तक नहीं आ पाएगा, जैसा कि हम पहला और दूसरा थिस्सलुनीकियों के पुस्तक में पढ़ते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है दानियल 7:22 में, जब तक वह अति प्राचीन न आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे और उन पवित्र लोगों के राज्याधिकारी होने का समय न आ पहुंचा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अति प्राचीन, यह प्रभु यीशु है, एकमात्र वही है जो ख्रिस्त विरोधी का दमन कर पाएगा। तब लिखा है पवित्र लोग, ये नए नियम के नहीं पुराने नियम के पवित्र जन हैं। अपनी पहली बुझाने का प्रयास न करें, बाइबल जो कहती है हम उसी पर चलें, हम अपने विचार को प्रकट न करें। जी हाँ, दानियल की पुस्तक 7:23 में आगे लिखा है, उसने कहा उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दांव कर चूर चूर करेगा। यहाँ चौथा पशु एक राज्य का प्रतीक है, जबकि पद 17 में वह एक राजा का प्रतीक था। राजा को राज्य से अलग करना संभव नहीं है, दोनों ही एक साथ चलते हैं जैसे द्वार के दो पल्ले। हम आगे पढ़ते हैं दानियल नबी की पुस्तक 7:24 में लिखा है, उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। मेरे प्रियो, पशु के 10 सींग हैं और वे अंतिम राज्य का रूप प्रकट करते हैं। इनमें से प्रत्येक राजा का अपना राज्य है। एक और 11वां सिंह उगेगा, वह अन्य से भिन्न होगा और 3 राजाओं को हराकर संपूर्ण संसार का अधिनायक होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13:7 में यही दृश्य दिखाया गया है। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा पर अधिकार दिया गया। वह पाप का पुरुष, ख्रिस्त विरोधी होगा और महाक्लेश के युग में विश्व शासक होगा। यह समय 7 तक का होगा। और हम आगे पढ़ते हैं दानियल 7:25 में लिखा है, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3:30 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। ध्यान दीजिए, यह छोटा सिंह परमेश्वर की निंदा करेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13:5-6 में लिखा है, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार भी दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। मेरे प्रियो, ख्रिस्त विरोधी का एक लक्षण यह होगा कि वह परमेश्वर और प्रभु यीशु का विरोधी होगा। यह ख्रिस्त विरोधी का एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है प्रभु यीशु की नकल। मेरे विचार में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13:2 ख्रिस्त विरोधी के इन 2 रूपों को प्रकट करते हैं। पहला, वह प्रभु यीशु का विरोधी और निंदक है और दूसरा, वह झूठा भविष्यद्वक्ता है जो अपने आप को मसीहा कहेगा। वह भेड़ का रूप तो धारण करेगा परंतु भेड़ की खाल में भेड़िया होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12:13-17 में लिखा है कि वह परमेश्वर की आज्ञा मानने वालों से लड़ने को गया अर्थात उन्हें सताने के लिए गया। समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। वह छोटा सिंह प्रथाओं और नियमों को बदलेगा। उसका राज्य बहुत कम समय तक होगा, 3:30 काल तक के समय वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि महाक्लेश अर्थात महासताव के 3.5 के अंतराल में वह पृथ्वी पर राज करेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11 अध्याय उसके 2-3 पद, 12 अध्याय उसके 6 पद, 13 अध्याय उसके 5 पद में हम इन सारी बातों को पढ़ते हैं। मेरे मित्रों, यह हम सब के लिए एक गंभीर विषय है कि सताव के समय, महाक्लेश के समय शैतान अपना रूप दिखाएगा, लोग उसकी ओर फिरेंगे और कई लोग उसे अपना प्रभु भी कहेंगे और यह समय मनुष्य के लिए बहुत ही कठिन समय होगा। मेरे मित्रों, इन स्वप्नों के द्वारा से परमेश्वर हमें बताता है, इन दर्शनों के द्वारा से बताता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। परमेश्वर का वचन सत्य है और वह कभी टलता नहीं। इसलिए आइए आज हम इस वचन पर विश्वास करें और परमेश्वर से और अधिक प्रेम करें। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने उस अंतिम पशु के बारे में जान लिया जो ख्रिस्त विरोधी है। तो आइए हम सब निरंतर परमेश्वर की संगति में बने रहें ताकि हम उसके द्वारा आशीषों को प्राप्त करते जाएं। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
ए बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। ए बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है।